ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंद पंद्रहवां अध्याय। अध्याय का नाम है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। श्लोक संख्या 46।
नोचे प्रमत असत इंद्रिया वाजिसुता नित्वोत्पथं विश्यदस्योषु निक्षिपन्ते। तेदस्यवः सहाया सुत ममुं तमोंधे। संसार कूपा उरु मृत्यु भये क्षिपन्ते।
अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की नोचेता, यदि हम अच्युत कृष्ण के उद्देश्यों का पालन नहीं करते तथा बलराम की शरण नहीं ग्रहण करते, प्रमतम लापरवाह असावधान असत जो सदैव भौतिक चेतना की ओर उन्मुख रहती है, इंद्रियां वाजी घोड़े की तरह कार्य करते हुए, सूतः रथ हांकने वाला बुद्धि, नेत्वा लाकर उत्पथम भौतिक इच्छा रूपी पथ पर, विषया इंद्रिय विषय दस्युषु लुटेरों के हाथ में निक्षिपन्ति फेंकते हैं। ते वे दस्यवे लुटेरों सा सहित हयसूतम घोड़े तथा सारथी को, अमम वे सब, तमह अंधकार अंधे अंधा, संसार कूपे संसार रूपी कुएं में, उरु विशाल मृत्यु भये मृत्यु का डर, क्षिपन्ति फेंकते हैं। अन्यथा यदि मनुष्य अच्युत कृष्ण तथा बलदेव की शरण ग्रहण नहीं कर लेता तो इंद्रिया रूपी घोड़े तथा बुद्धि रूपी सारथी दोनों ही भौतिक कर्मश के प्रति उन्मुख होने से अनजाने ही शरीर रूपी रथ को इंद्रतृप्ति के मार्ग पर ला खड़े करते हैं। इस प्रकार जब विषय के धूर्तों खाना सोना तथा मैथुन के द्वारा वह आकृष्ट होता है तो घोड़े तथा सारथी संसार के अंधकूप में गिरा दिए जाते हैं और मनुष्य पुनः जन्म मृत्यु की घातक तथा अत्यंत भयावह स्थिति में आ पड़ता है। रिपीट नहीं करेंगे बहुत भयावह है, अनुवाद है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बहुत मधुर है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की गौनिताई कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकल सकता। इसका संकेत यहां नोचेत शब्द से मिलता है जिसका अर्थ है कि मनुष्य सदा भौतिक संसार के अंधकूप में रहता रहेगा। जीव को निताई गौर अर्थात कृष्ण तथा बलराम से बल प्राप्त करना चाहिए। निताई गौर की कृपा के बिना अज्ञान के इस अंधकूप से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत आदि 1.2 में कहा गया है, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहित गौड़ादये पुष्पवंतो चित्रौ छंदो तमो निदो। मैं श्री कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद को सादर नमस्कार करता हूं, जो सूर्य तथा चंद्रमा के समान है। वे एक साथ गोड़ के क्षितिज में अज्ञान का अंधकार दूर करने के लिए उदित हुए हैं और इस प्रकार आश्चर्यजनक रीति से सबों को वे वर दे रहे हैं। यह भौतिक जगत अज्ञान का अंधकूप है। इस अंधकूप में पतित आत्मा को गौर निताय के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि तब वह इस जगत से सरलता से उबर सकता है। उनके बल के बिना मीमांसात्मक ज्ञान के बल पर भौतिकता के बंधन से निकलने का प्रयास अपर्याप्त होगा। ओम अज्ञानस्य निरंधस्य ज्ञानंजनाय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साव्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। ये बहुत जो अध्याय है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश, ये लगभग समाप्त होने वाला है सातवें स्कंद के साथ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। आप में से अधिकांश सब भक्त प्रतिदिन भागवतम कक्षा में नहीं आ पाते, आप नहीं सुन रहे होंगे, तो प्रसंग बताने का प्रयास करेंगे ताकि हम इस तात्पर्य को, इसके अनुवाद को अच्छे ढंग से अप्रिशिएट कर सकें। नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि कैसे हम मनुष्य जीवन में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और उन्होंने बताया कि मनुष्य शरीर की तुलना एक रथ से की, और इस रथ पे जो सवारी है वो जीव है, और जो चालक है वो बुद्धि है, मन लगाम है, घोड़े बुद्धि, घोड़े जो है इंद्रियां हैं, और जो मार्ग है वो इंद्रियों के विषय हैं। और इसको अगर कोई कंट्रोल करता है सही ढंग से, तो यही रथ पे सवार होके, यानी इसी शरीर का सही उपयोग करके हम भगवत धाम भी जा सकते हैं, और इसी मन बुद्धि और इंद्रियों का गलत उपयोग करके, जैसे कि आज के श्लोक में बताया, हम अंधकूप में भी गिर सकते हैं। कैसे हम ड्राइव करते हैं ये निर्भर करता है इस चैरियट को, और इस के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं वो श्लोक संख्या 23 और 44 में बताया गया कि बल जीवन में मनुष्य के जीवन संबंधी अवधारणाएं कभी कभी कामेच्छा अज्ञान के कारण दूषित होती हैं। आसक्ति शत्रुता लोभ शोक मोह भय मद झूठी प्रतिष्ठा अपमान दोषण वेषण छलावा ईर्ष्या अहिष्णुता कामेच्छा मोह भूख तथा निद्रा, ये सारे हमारे शत्रु हैं। इन सब शत्रुओं के बीच में रथ को सही मार्ग पर चलाना बहुत कठिन है। भूख और निद्रा को भी शत्रु बताया गया, बताइए तो बड़ा लगभग असंभव है। और लेकिन बताया गया इसके बाद क्या उम्मीद है, जब तक मनुष्य शरीर को इसके विभिन्न अंगों तथा सांस समान सहित जो पूर्णतः अपने वश में नहीं है स्वीकार करना है, तब तक उसे अपने श्रेष्ठ जनों अपने गुरु तथा गुरु के पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण कमलों को धारण करना चाहिए। उनकी कृपा से वह ज्ञान की तलवार को तेज कर सकता है, और भगवान कृपा के बल पर तब वह उपयुक्त शत्रुओं को पराजित कर सकता है। इस प्रकार भक्त को अपने ही दिव्य आनंद में लीन रहने में समर्थ होना चाहिए और तब वह अपना शरीर त्याग कर अपनी आध्यात्मिक पहचान फिर से पा सकता है। इस सारे शत्रुओं के बीच में घिरा हुआ अंधकूप में पड़ा हुआ कलयुग का जीव कैसे अपना उद्धार कर सकता है? गुरु और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा, उनकी कृपा से हमें बल प्राप्त होगा जिससे हम इस ज्ञान की तलवार को उठा सकेंगे और अपने शत्रुओं को पराजित कर सकेंगे। आज के श्लोक में बताया जा रहा है नौ चेत, यदि हम इस प्रकार से शरण ग्रहण नहीं करते, कृष्ण और बलराम की हम शरण ग्रहण नहीं करते हैं तो क्या होगा? प्रमतम और लापरवाह रहते हैं, असावधान रहते हैं इस रथ को चलाते हुए। तो जो असत इंद्रियां हैं जिनकी तो स्वाभाविक रुचि है इंद्रिय विषयों के ऊपर, वो घोड़े की तरह कार्य करते हुए सूतः रथ हांकने वाले को यानी ड्राइवर को बुद्धि को नित्वा लाकर उत्पथम भौतिक इच्छा रूपी पथ पर, विषय इंद्रिय विषय का ही ये मार्ग है। दस यीशु लुटेरे, लुटेरे कौन से हैं? जो पीछे आपको सब बताए, आसक्ति भय द्वेष राग निद्रा भूख लालच क्रोध काम इच्छाएं, ये सब लुटेरे हैं। तो इन लुटेरों के हाथ में फेंक देते हैं और ये लुटेरे क्या करते हैं? ये लुटेरे सहित सारे के सारे घोड़े और सारथी को अंधे कुएं में डाल देते हैं और फिर वो वहीं पड़ा रहता है। अगर हम कृष्ण और बलराम की या गौर निताय की शरण ग्रहण नहीं करते हैं, ना? तो प्रभुपाद जी ने हालांकि श्लोक में समस्या बताई गई है, लेकिन प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समाधान बताया है। पिछले श्लोक में भी समाधान था, प्रभुपाद ने इसको और कंटिन्यू किया है। प्रभुपाद पहले ही वाक्य में लिख रहे हैं, गौर निताय कृष्ण बलराम की रक्षा के बिना मनुष्य संसार के अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर नहीं निकल सकता। तो अगर हम अंधकार रूपी इस अंधे कुएं से बाहर निकलना चाहते हैं, अंधे कुएं को उरु बहुत बड़ा बताया गया, एक तो अंधा कुआं, कुआं तो हमने देखा नहीं होगा शहर में रहकर, कभी कभी हम जाते हैं बरसाना में या वहां पे नंदगांव में कुआं देखते हैं, बड़े बच्चे जैसे देखते हैं कुएं, देखते हैं चिल्लाते हैं उसमें आवाज आती है, बड़े खुश होते हैं लोग, और लोग एज एन एडवेंचर बाल्टी डाल के पानी निकालते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। एक कोशिश कीजिए कुआं कितना गहरा कितना बड़ा और अंधा हो, एकदम गहरा ही अंधकार ही अंधकार, और हम चिल्लाते भी रहे बोलते भी रहे कोई हमें सुनने वाला भी ना हो ना कोई देखने वाला हो, कैसे हम बाहर निकलेंगे? ये बहुत ही जगह की तुलना उससे की गई है। अगर हम भगवान के चरणों की शरण ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ये जो लुटेरे हैं जो हमारे शत्रु हैं ये हमें इस अंधे कुएं में डाल देते हैं, तो गौर निताय की कृपा के बिना हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। और कलयुग में तो इतनी अज्ञानता है कि अपने इन शत्रुओं को हम अपना मित्र मानते हैं। कलयुग में ना तो माता पिता बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ना स्कूलों में ट्रेनिंग देते हैं कि काम इच्छाओं पर काबू पाओ, ऐसा कोई है नहीं, अपने पैशन को रोको। हमने जो ट्रेनिंग दी थी बी पैशनेट, है ना, कोई कंपनी ज्वाइन करता है बोला पैशनेट, है ना, किलिंग स्पिरिट होना चाहिए तो कहीं का रहेगा नहीं। आजकल माता पिता इंकरेज करते हैं अपने बच्चों को कि साथ में बैठ के मदिरा पान पी, मेरा शेर का बेटा है साथ में बैठ के पिएगा मीट खा चल, अगर इन लल्लू बन जाएगा ये पता नहीं दुनिया इसको पता नहीं क्या समझेगी। जैसे हमारे रिश्तेदार में एक बेटा लड़का था 13-14 साल का, वो क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट खेलने गया सीख रहा था, उसके साथ किसी व्यक्ति होते हैं गाली देनी आती है, बेचारे अच्छे करते हुए गाली देनी आती है, उसका खूब मजाक उड़ाया, उसको पुल्ली करती है ना बेचारा इतना मजाक उड़ाया सब लड़कों ने मिलकर, उसको गाली देने नहीं आती। वो घर में वापस आया मम्मी को बताया, मम्मी बड़ी परेशान हो गई, वो मेरे पास लेके आई, देखो ऐसी ऐसी परेशानी है, उसको कैसे मैं स्मार्ट बनाऊं, गाली देनी नहीं आती इसको, इसका क्या होगा, इसको गाली देने नहीं आती, चिंता की बात है। सही में ये है, माता पिता अपनी छोटी टीनेज लड़की को लेके आते हैं डिप्रेशन में, इसको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है पाए, मैं भगवान से प्रार्थना करूं इसको बॉयफ्रेंड मिल जाए। थिंग्स आर डिग्रेडेड सो मच, ये कलयुग है, किसी के जीवन का लक्ष्य नहीं है कि इन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें, किसी ने सोचा ही नहीं है कि संसार से बाहर निकलना है। हर कोई आर्ट ऑफ लिविंग इस संसार में खुश रहने का प्रयास कर रहा है, जबकि सारे शास्त्र हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं, लेकिन हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं कि संसार में कैसे खुश रहा जा सके। पूरा अज्ञानता का वातावरण है ऐसे कलयुग में, ये तो संदेश है सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए। कलयुग में कौन सुसंस्कृत है? संस्कृति तो है ही नहीं। ऐसे वातावरण में हम में से कुछ लोग जिनको सौभाग्य से प्रभुपाद जी का आश्रय प्राप्त हुआ है, अगर हमें भक्ति करनी है तो वातावरण अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। इस वातावरण में बिल्कुल फोकस रहना, केंद्रित रहना बिल्कुल उसी के समान है जैसे आप मंदिर में आते हैं, इस मार्बल के फर्श पे पूरा तेल बिछा हुआ है, कैसे चलेंगे? अभी फिसले कि अभी फिसले? ध्यान देंगे कि नहीं देंगे? और जितना भी ध्यान देते फिसल तो कभी भी सकते हैं। तो ये पूरा वातावरण है कलयुग का। लेकिन साथ ही साथ इस कलयुग में बहुत विशेषता भी है, सभी शास्त्रों में इसका गुणगान भी गाया गया है, वेरी स्पेशल कलयुग। ऐसे अंधे कुएं में जो गिरा हुआ व्यक्ति जिसके बाहर निकलने कोई चांस ही नहीं है, भगवान गीता में कहते हैं शिव काम में अश्रमण लोक आश्रय योनिम आपन्ना मूला जन्मनि जन्मनि अप्राप्य माम वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। ऐसे जो आसुरी लोग होते हैं, जो इंद्र तृप्ति में लिप्त रहते हैं, उनको मैं बार 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 आसुरी योनि में डालता हूं, वो अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, सुअर बनेंगे और उनका निवारण का कोई चांस नहीं, ऐसे निम्न योनि में घूमते रहते हैं। ऐसे अंधे कुएं में गिरे हुआ जीव तुरंत भगवत धाम जा सकता है, किसी कृपा से? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु से, श्री गौरनिदाय की। कितना हैरानजनक, कितना अद्भुत ये बात है, आश्चर्यजनक। कलयुग में हम सब मर्सी केसेस हैं। जय भगवान ने कृपा की, श्री राधा राधे करमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री श्री गौरनिदाय की। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से सीधा ये बद जीव जिसकी कोई योग्यता नहीं है सीधा कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है स्ट्रेट अवे। किससे माध्यम से? नित्यानंद प्रभु गौरांग महाप्रभु कृपा दे रहे हैं संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं इस संकीर्तन यज्ञ में पूरे हृदय से भाग लेकर। यहां तक भक्ति ठाकुर जी नवदीप माध्यम ये भी बोलते हैं कि जो एक बार गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के नाम को पुकारते हैं, पुकारिए गौरांगा नित्यानंदा, पता क्या होता है? जिसने नाम पुकारा कृष्ण प्रेम देखते आता है, भैया किसने पुकारा है नाम, और कृष्ण प्रेम उनके पीछे भागता है कि आपको मैं आपको पकड़ूंगा ही पकड़ूंगा। कृष्ण प्रेम हमें जबरदस्ती पकड़ता है और हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। इतनी बड़ी कृपा, अनजाने में भी कोई गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम ले ले। और इस संकीर्तन यज्ञ में जब हम भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, महाप्रभु ने बोला मेरी एक ही सेवा है कि मेरे पास ये कृष्ण प्रेम के फल इतने ज्यादा हैं, ना तो मैं अकेला इसका आस्वादन कर सकता हूं ना बांट सकता हूं, मुझे क्या चाहिए? पूरी टीम चाहिए, वॉन्टेड एजेंट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग मर्सी, है ना, खूब सबके लिए, सबके लिए सेवा है। कृष्ण प्रेम भगवान की करुणा को बांटना और इसका आस्वादन करना है। तो भगवान चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाएं, इस हरि नाम का प्रचार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इस हरे कृष्णा के प्रचार से हम लोगों का ये फैमिली बिजनेस है, हम लोग भगवान की करुणा को बांटते हैं, ये हमारा काम है पूरे गुरु परंपरा का। तो जितना हम इसको बांटेंगे, जिसका आस्वादन करेंगे, इस हरि नाम के अंदर ही सारा दिव्य ज्ञान छिपा है। और इस दिव्य ज्ञान की परिकाष्ठा है वैराग्य, नॉलेज एंड डिटैचमेंट। चैतन्य महाप्रभु यही देने आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा। और इस ज्ञान और वैराग्य के बल पर हम इन शत्रुओं पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो सिंपल। तो ये कलयुग की विशेषता है, हम सब मर्सी केसेस हैं, हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हमें भगवान की कृपा से हमारा उद्धार हो जाता है। और अब देखिए, इस कलयुग में वैसे तो भगवान कहते हैं कि भक्तों के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद की कृपा से पूरे पृथ्वी पर भक्त लोग फैले हुए हैं और कहीं भी भक्त लोग दिखाई दे जाते हैं, है ना, खासकर विदेशों में हम देखते हैं भक्त लोग पुस्तक वितरण करने जाते हैं कहां कहां पे, फुटबॉल स्टेडियम में, है ना, पब्स में, म्यूजिक कंसर्ट्स में, बड़े अजीब अजीब स्थानों पे। और जहां ऐसे स्थानों पे जाते हैं, जैसे म्यूजिक कंसर्ट में गए, लोगों ने मदिरा पान किया हुआ है, नशे में है और पता नहीं धुन में अपनी है नहीं क्या चल रहा है, जबरदस्ती उनके हाथ में किताब रखी जाती है वो ले लेते हैं, पता नहीं चलता, लेकिन बाद में उनका जीवन ही बदल जाता है, है ना। बड़ी आसानी से भक्त लोग मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो टकरा जाते हैं, है ना। जैसे रशिया में क्या बताया जाता है कि एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर था, ऐसी किताबें बांटते बांटते एक गलत सड़क पर चला गया और उस सड़क पर क्या था, बुचर थे सारे, कैसे स्लॉटर हाउसेस थे, और वहां पे बुचर खाने में क्या होता है, सारे पशु लटके हुए थे खून से लथपथ। इसका देखते उसको लगा भागू यहां से, आसपास यहां ही हम, जैसे आप यहाँ पे चांदनी चौक में नई सड़क पे जाते हैं तो किताबों की दुकान है, सब किताबें किताबें पड़ी हुई है। वैसे वो गया उस सड़क पे, दोनों तरफ पशु लटके में खून टपक रहे और हर तरह के पशु, सारी वेराइटी, और काटा जा रहा है मशीनों के द्वारा, हाथ के द्वारा। तो बोला कहां फंस गया, निकलना चाहिए जल्दी जल्दी। वो निकल रहा था तभी उसकी आवाज है, यहां पे आ। देखा उसको एक कसाई बुला रहा था बेचारा, वो उसके हाथ में खून ही खून, गरम गरम खून अभी, और एक हाथ में चाकू है। क्या है तुम्हारे पास? तो उसके पास कुछ किताबें थी। तो उसने कहा, दूर से दिखा दिया उसने, किताब कौन सी, लॉज ऑफ नेचर। दूर से उसने दिखा दिया। बोला ला, और ये डरे, बोले ठीक है, क्या दिखाओ, तुम बड़े से दिखाओ। तो उसने दिखाया, आप दिखाइए, खून से लगकर किताब, हाथ से उसने किताब को छुआ, ऐसे पेज लेके सारे किताब में खून लग गए। मैंने क्या कर दिया, क्या ठीक है दे दो, उसे दो तीन किताबें और दे दे, और भागा वहां से। अब आप बताइए, किसी और युग में ये पुस्तक वितरण शास्त्रों को लेकर, अभी भी हम जाते भविता लेके, लोग बोलते हैं ये बेकदरी कर रहे हो आप, भगवान की किताब को बाहर ला रहे हो, अच्छा नहीं है। ऐसे उनका कहना ठीक है। वैदिक काल में पूरे गांव में एक ब्राह्मण होता था, उसके घर में होती थी भगवदगीता, महाभारत, रामायण, और पूरा गांव उसके पास आके सुनता था, और वो होती थी संस्कृत में, और संस्कृत में बोल के वो लोकल भाषा में अनुवाद करके सुनाता था, बस इससे सबका पोषण होता था। लेकिन अब कल कोई तो ऐसा आता नहीं, इसलिए विशेष कृपा है कलयुग में कि जगन्नाथ जी सड़क पे आते हैं दर्शन देने, भक्त निकलते हैं बाहर शास्त्र ज्ञान लेके। गीता में भगवान ने क्या बताया कि गुरु जाता है शिष्य के पास ज्ञान लेके, क्या बताया, शिष्य जाता है गुरु के पास, तद विधि पढ़ी पाते न परिप्रश्न न सेवया। हम ऐसे कितने लोगों ने विधि का पालन किया था? अब विदेशों में आप सोचते हैं कोई करेगा, पहले ढूंढेगा प्रमाणिक गुरु को, कोई ढूंढेगा उसको जाके प्रणाम करेगा, फिर उसे इंक्वायरी करेगा, ऐसा नहीं है। भक्त लोग ही गुरु बन के उससे आ जाते हैं किसी भी स्थिति में हो, और उसको ज्ञान दे देते हैं। तुम मांगो या ना, तुम अहंकार में तब भी ज्ञान लो, किसी ना किसी ढंग से उसको पुस्तक पकड़ा दिए। आप देखिए कलयुग की विशेषता है, और ऐसे कितने ही लोगों का जीवन बदला है नहीं आश्चर्यजनक बात। और संस्कृत भाषा में बहुत किताबें नहीं है, मलिच्छों की भाषा में, मलिच्छों की भाषा में खून से लथपथ वो जो है व्यक्ति जिसके हाथ में अभी चाकू और खून था, वही पुस्तक पढ़ के उसके हाथ में क्या आ जाएगी, जप माला आ जाएगी, है ना। ऐसे कितने केसेस हैं हमारे यहाँ पे, जो बुचर थे आज वो फुल टाइम ब्रह्मचारी बने हुए हैं। ये प्रैक्टिकल केसेस देखे गए हैं, हम लोग हम समझ में नहीं सकते इस कृपा में कितनी शक्ति है। तो वैसे तो देखा जाए कलयुग में सारा निराशा का वातावरण है, लेकिन देखा जाए तो असीमित आशा भी है। जैसे एक शू कंपनी ने अपने सेल्समैन को भेजा था एक गांव में, तो निराश होकर वापस आ गए, बोले गांव में कोई चप्पल डालता ही नहीं, बिजनेस स्कोप ही नहीं, कहता बहुत स्कोप है बुक मूर्ख, यहां कोई चप्पल डालता ही नहीं, इसका कितनी चप्पलें बिकेंगे। तो इस कलयुग में सारे के सारे पतित हैं, और पतित पावन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हैं, तो बहुत स्कोप है। तो निराश भी हो सकते हैं कलयुग के वातावरण को देखकर, और बहुत आशा भी हो सकते हैं कि देखो कितना स्कोप है इस संकीर्तन आंदोलन को फैलाने के लिए। तो जो निराशा है ये नास्तिकता का लक्षण है, जिनको पूरी श्रद्धा नहीं है वो निराश हो जाएंगे, डिप्रेस हो जाएंगे, हाँ क्या करें ये तो बहुत खराब आता है। लेकिन जिनको महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा में पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, उनको बहुत उत्साहित होंगे, अरे अब बिजनेस का काम आया। महाप्रभु कह रहे हैं कि ले जाओ इस संकीर्तन के फलों को और बांटो, तो कितने हमारे पास कस्टमर्स हैं, सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये जो बहुत विशेष है, और नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं जिनके द्वारा हमें कृपा प्राप्त होती है। श्रीला प्रभुपाद पिछले श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कृपा के बिना हम राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। तो देखा जाए तो हमारे राजा राधिकारमन जी एक तरफ हैं, कृष्ण बलराम दूसरी तरफ हैं। बलराम जी का राधा रानी के साथ कोई फोटो तो होता नहीं ऐसे, देखा कभी आपने? चैतन्य महाप्रभु और राधा कृष्ण इकट्ठे कहीं देख पड़े होते हैं, जैसे कि मायापुर में हम देखते हैं। लेकिन बोला कि बलराम जी की और नित्यानंद जी के पास है हमें राधा रानी और कृष्ण के प्रेम प्राप्त होता है। जब तक नित्यानंद प्रभु रिकमेंड नहीं करते, राधा रानी उसको स्वीकार नहीं करती अपनी सेवा में। तो नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, नित्यानंद प्रभु ही कृष्ण को प्रकाशित करते हैं हमारे हृदय में, उनको प्रकाश विग्रह भी बोला गया है, और वही कृष्ण की कृपा के एक रूप है, और वो अपनी कृपा बल जीव के हृदय में देते हैं पूरी गुरु परंपरा के माध्यम से। और इस गुरु परंपरा में हमारे जितने भी आचार्य हैं ये नित्यानंद प्रभु कृपा को धारण करते हैं, इसको समझते हैं, इसका साक्षात्कार करते हैं और इसको आगे देते हैं। इसीलिए इस हमारी गुरु परंपरा के प्रत्येक आचार्य हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद गुरु कृपा को धारण किया, उसको संभाल के रखा और उसका साक्षात कर करके उसको और मधुर बना के। हमारे जितने भी आचार्य हैं उन्हें समय परिस्थिति और काल को देखते हुए इस नित्यानंद गुरु की कृपा को बहुत ही सुंदर और मधुर भाषा में, जो कि उस समय के भक्तों के लिए, भक्त जीवों के लिए, जो उनके लिए रेलेवेंट था, उसको उन्होंने उस तरीके से प्रस्तुत किया जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी ने। तो इस ढंग से एक एक आचार्य हमारी गुरु परंपरा हमारे लिए वंदनीय है, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु की कृपा की वो वाहक है और उन्होंने इस कृपा को हमें हमारे तक पहुंचाया। श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार तमाक्षण गोस्वामी महाराज जी को यह पत्र लिखा कि ये जो मैं तुम्हें संकीर्तन में भाग लेने के लिए कहता हूं, ये मेरा आदेश नहीं है, ये पूरी गुरु परंपरा का आदेश है और ये पूरी गुरु परंपरा का आदेश चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। तो इसलिए हमारा कर्तव्य है कि एक बहुत सुंदर तरीका है कि अगर हम पूरी गुरु परंपरा को पसंद कर लेते हैं तो तुरंत हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाती है। और गुरु परंपरा की कृपा कैसे प्राप्त होती है, जैसे यहां बताया जा रहा है कि सारे के सारे लुटेरे हैं जो हमारे दुश्मन हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी बताते हैं कि अगर हम भक्ति के पथ पे हैं तो ये लुटेरे कभी भी आते हैं। हाईवे है भक्ति का, गोलोक धाम जाने का, आप फुल स्पीड से चल रहे हैं, ये लुटेरे कभी भी आ जाएंगे। कौन कौन से लुटेरे? काम, क्रोध, दो मोह, मत्स्य है ना, भूख और निद्रा भी, इनको भी लुटेरा बताया गया। ये सब के सब कभी भी आ जाएंगे और हमारी भक्ति के मार्ग में बाधा डालेंगे, हमें लूट लेंगे। क्या लूट लेंगे हम? हमारे पास कौन सा धन है? क्या लूटेंगे? क्या लूट लेंगे? एक भक्त से क्या लूट सकते हो? हमारी चेतना को दूषित करेंगे, हमारी श्रद्धा को लूट लेंगे, है ना, हमारी जो कोमल श्रद्धा है उसको वो लूट लेंगे, हमें भ्रमित कर देंगे, हमें गलत रास्ता दिखा देंगे, डाइवर्जन, हम सीधा रास्ता दिखा रहे हैं, हमसे छल करेंगे गलत रास्ते में जो कि सीधा जा रहा अंधे कुएं को, और बोले धन्यवाद धन्यवाद आपके। यह बल जीव की मूर्खता है कि वो अपने शत्रु को मित्र समझता है और मित्र को शत्रु समझता है। तो हम अपने शत्रुओं की शरण लेते हैं, अपने मन की शरण लेते हैं, और मन एक धरातल, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे सारे के सारे शत्रु इकट्ठे होते हैं और सारे के सारे अपनी योजनाओं को वो एग्जीक्यूट करते हैं और हम मन को फॉलो करते हैं। तो इस सारे के सारे जब लुटेरे हमें सताएं तो रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं कि जोर से अपने हृदय के अंतःकरण से आप क्या बुलाएं? पुलिस को बुलाएं, है ना। और पुलिस कौन है? भगवान के नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुकारें जितना हमारा प्रभुपाद कहते हैं क्वालिटी ऑफ ये जो क्राई, ये हमारी जो पुकार, इसका क्या क्वालिटी है, कितने हृदय से हमने पुकारा है, भगवान निश्चित रूप से आएंगे। जैसे कि द्रौपदी ने पुकारा था, निश्चित रूप से भगवान आएंगे। और भगवान आएंगे या भगवान अपने एक कॉन्स्टेबल्स को भेजेंगे, हाईवे पे कई कॉन्स्टेबल्स होते हैं जो कि उस हाईवे पे चलने वाले पथिकों की जो राहगिरी होती है उनकी रक्षा करते हैं। और ये पुलिस कांस्टेबल्स कौन है? हमारे सभी पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, पूरी की पूरी गुरु परंपरा, पूरी की पूरी जीत आ जाएंगे ड्यू 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 करते कि किसने पुकारा हमें। और जैसे ही वो आएंगे सारे के सारे लुटेरे भाग जाएंगे। है किसी को एक्सपीरियंस है? प्रभुपाद को एक शिष्य ने पत्र लिखा कि मुझे काम वासनाएं बहुत सताती है। प्रभुपाद ने क्या बोला? जोर से मेरा नाम पुकारा करो, जय श्री प्रभुपाद। करके देखें, जब भी हमारे अंदर कोई गंदी वासनाएं आती हैं, हमें गंदे विचार सताते हैं, तो क्या करना चाहिए? गौरांग महाप्रभु को हृदय से पुकारें, नित्यानंद प्रभु को पुकारें, प्रभुपाद जी को पुकारें। ये उपलब्ध है, हमारे ऊपर कृपा बरस रही है, हमें बस उसको एक्सेस करना है। बस प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता यह है कि वो इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए। हमें लाभ उठाना है इस कृष्णा भावनामृत आंदोलन का। इतनी सारी सुविधाएं, और अगर हम इस कृष्ण भक्त आंदोलन में हैं और फिर भी इसका लाभ ना उठाएं तो कितने बड़े ये दुर्भाग्य की बात होगी। बड़ी आसानी से सारे के सारे, ये दिल्ली पुलिस की तरह कॉन्स्टेबल्स नहीं है, तुरंत तुरंत आएंगे, क्योंकि जिस संघ से भगवान समय और स्थान की परिधि में नहीं बांधे जा सकते, सभी के सभी आचार्य गण हम पे कृपा करने के लिए उपलब्ध हैं। इस संघ से प्रभुपाद हमारा पूर्ववर्ती आचार्यों से संबंध स्थापित करते हैं। एक बार तमालचंद गोस्वामी महाराज जी का ऑपरेशन हुआ था, वो हॉस्पिटल में थे और उनको एक सपना आया और उन्होंने सपना प्रभुपाद जी को बताया और प्रभुपाद बोला कि यह बिल्कुल बोनाफाइड सपना है। कई बार भक्तों को भी सपने आते हैं तो सपने बोनाफाइड भी हो सकते हैं और ऐसे ही कल्पना भी हो सकती है, इसकी हमें पुष्टि गुरु से कर लेनी चाहिए। तो तमालचंद गोस्वामी महाराज ने पुष्टि की प्रभुपाद जी से। तो सपना क्या था? सपना यह था, महाराज ने देखा कि उनके सपने में प्रभुपाद भी आए हैं, भक्ति सिद्धांत सवि ठाकुर महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, रूप गोस्वामी, सारे आचार्यगण, और सब प्रभुपाद से पूछ रहे हैं हमें रिपोर्ट दो हमारे मिशन की, क्या किया तुमने। रिपोर्ट मांग रहे थे। तो प्रभुपाद ने रिपोर्ट दी कि आजकल इस कलयुग में बहुत बुरा हाल है, कोई तपस्या करता नहीं है और किसी को रुचि नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से मुझे कुछ अच्छे शिष्य मिले हैं, हालांकि ये भी अज्ञानता में है, लेकिन इनके अंदर एक अच्छा गुण है कि इनको मुझ में श्रद्धा है और मैं जो कहता हूं वो कर लेते हैं। तो प्रभुपाद को ये सपना सुनाया, प्रभुपाद बड़े पसंद करते, बिल्कुल ठीक बात है। और इसलिए प्रभुपाद जब भारत में आते थे अपने विदेशी शिष्यों के साथ, तो विदेशी शिष्य जो थे उनको कोई संस्कृत तो थी नहीं, वो उनको कोई भारत के संस्कार मालूम नहीं थे, तो वो कुछ ऐसे काम कर देते थे जिनके कि वृंदावन के लोग, मायापुर के लोग, बंगाल, उनको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, देखिए ये सन्यासी और ऐसा आचरण कर रहे हैं, इनको मालूम नहीं कि वैष्णवों का ऐसा आचरण होना चाहिए। तो प्रभुपाद कहते हैं ठीक है, ये अभी अभी नौसिखिए, इनसे कुछ गलती हो गई, लेकिन मैं एक बड़ा अच्छा गुण है, फिर रिपीट करते थे, क्या अच्छा गुण है कि मैं जो कहता हूं वो करते हैं, और इसी एक अच्छे गुण के आधार पर इनके सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। इन्हें भी प्रभुपाद उनको कह रहे थे कि आपके अंदर अच्छे गुण हैं लेकिन मैं जो कहता हूं आप वो करते नहीं, तो आपके सारे गुण किसी काम के नहीं है। इन भक्तों में अवगुण है लेकिन जो मेरा कहना मानते हैं इसके इनके सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। यानी कि किसी ढंग से अगर हम महान आचार्यों के हृदय को छूते हैं, उनको प्रसन्न कर लेते हैं, उनकी कृपा में इतनी शक्ति है कि हम सीधा अंधे कुएं से भगवत धाम जा सकते हैं। एक्सप्रेस हाई है, आप देखिए कितनी कृपा में शक्ति है। इसीलिए भगवान गीता में ही कहते हैं, येषां तु अंधकता पाप जनानां पुण्य कर्मणां त्वे द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। हम भक्ति में दृढ़ता से क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इस संसार की जो प्रकृति है वो तो बदलेगी नहीं। कभी भी हमें आशा नहीं करनी चाहिए कि मैं इस आंदोलन में जुड़ गया हूं भौतिक जगत की प्रकृति बदल जाएगी, वो तो वैसे ही रहेगी, द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, और इससे हम इतने विमोहित हो जाते हैं कि भक्ति में दृढ़ता खो बैठते हैं। कैसे हम दृढ़ रहे? कहा जा रहा है बलदेव विद्याभूषण इसकी टीका में कहते हैं कि ऐसे कार्य करें, पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का अर्थ है ऐसे कार्य जिससे कि पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न हो। तो ऐसे कार्य करेंगे जब पूर्ववर्ती आचार्य प्रसन्न होते हैं, द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, हम द्वंद्व और मोह से निर्मुक्त होकर दृढ़ता से भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो हम उन विटोरियों से बच सकते हैं अपने पूर्ववर्ती आचार्यों से संबंध स्थापित करके। वैसे भी आप देखें घर में पिता भी होते हैं और दादा भी होते हैं, कौन ज्यादा कृपालु होते हैं? जब पिताजी बाहर चले आते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दादा बच्चे हमारे बच्चे को देखभाल करेगा। तो हमारी जनरेशन पिछली जनरेशन से ज्यादा जो है सौभाग्यशाली है। हमारे जो पिताजी लोग हैं जो प्रभुपाद जी के शिष्य करने में उन्होंने बहुत मेहनत की और ये सारा का सारा इस्कॉन संस्था हमारे सामने दिया और हम लोग अब धनवान पिता के बेटे हैं ना। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम स्पॉइल्ड ब्रैड बनना चाहते हैं, इस धन को उजाड़ दें या इसको मेंटेन करें, कम से कम मेंटेन तो करें। और जो दादा तो बहुत कृपा करते हैं, प्रभुपाद गोपाल स्वामी महाराज बोलते हैं प्रभुपाद हमें इतना डांटते थे कि अगर आजकल ऐसे डांटे तो सब भाग जाएंगे। बहुत डांटते थे प्रभुपाद, सब कांपते थे प्रभुपाद के आगे, है ना। और ऐसे ऐसे असाइनमेंट करते अचानक जाओ किन्या में जाओ, अरे जाओ बस खत्म, कोई नहीं चल जाओ पाकिस्तान जाओ, बस गोरगोन साहब चल जाओ भुवनेश्वर में मंदिर खोलो, प्रभुपाद कुछ चलो, ना किताब मिलेगी ना पैसा मिलेगा, अच्छे के जाओ। मैंने वैसे शुरू किया, तुम भी ऐसे शुरू करो, झोंपड़ी बनाओ, कहीं भी रहो, करो शुरू। ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए किसी को? हमारे तो सब कुछ रेडीमेड है। प्रभुपाद बोला है बिल्ट ए हाउस जस्ट डेकोरेट इट, फिर बोला द डेकोरेशन इज ऑलवेज ऑल्सो देयर जस्ट हैंग इट। सब कुछ है, सब कुछ है, इतनी सुविधाएं। पहले के टाइम ऐसे मंदिर नहीं होते थे, ऐसा ऑपुलेंट प्रसाद नहीं होता था। वर्णन आते आप पढ़ेंगे प्रभुपाद की कथाओं को, उनके शिष्यों के स्मरणों को, तो कलकत्ता मंदिर में इतना क्राइसिस था, भक्तों के पास खाने को कुछ नहीं होता था। एक विदेशी भक्त था जिसका बहुत लंबा चौड़ा शरीर था, उसको अच्छी खुराक चाहिए थी। वो कैसे अपने शरीर को मेंटेन करते थे? जो भगवान को आरती करते थे, दिया दिखाते थे, उसकी आरती के बाद जो हम फेंक देते हैं यहां पे, वो जलती रहती है ज्योत, उसको निचोड़ को से जो घी निकलता था उसको चपाती में लगा के खाते थे। घी भी नहीं होता था खाने के लिए भक्तों के पास। अभी तो सब कुछ हमें इतना मिल जाता आसानी से, तो इतना संघर्ष किया। लेकिन हम पे प्रभुपाद हमें पैंपर भी कर रहे हैं, चलो सारी सुविधाएं हैं, बस किसी ढंग से हम इस कृपा को संभाल के रखें। तो गौरांग महाप्रभु नित्यानुभव कृपा मिलती है, अब हमें अपने जीवन को इस ढंग से ढालना है कि इस कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट का हम पूरा लाभ उठा सके। इसका पूरा लाभ उठा लेंगे तो इसी जीवन में हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए अपने जीवन में, हम भक्ति में जीवन में क्या करें ताकि हम इस कृपा को संभाल सके और इस कृपा को प्राप्त कर सके। तो प्रभुपाद सबसे पहले कहते हैं पिछले श्लोक के तात्पर्य में कि हमें पूर्ण अपने शरीर को, ये शरीर क्या है, खून से, पस, हड्डी, मज्जा, सब गंदगी से बना हुआ शरीर, लेकिन फिर भी इसको बोला गया बहुत अच्छा वाहन है ये। कितनी कृपा है कि इसी वाहन से हम भवसागर को पार कर सकते हैं। आपने ऐसा कोई जहाज देखा है जो मलमूत्र से बना हुआ जहाज और पूरे भवसागर को पार कर गया? विशेष कृपा। यानी कि पूर्वपोवा कह रहे हैं यूज दिस बॉडी फुली इन सर्विस ऑफ कृष्ण। फुली, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यूज योर कॉन्शियसनेस फुली, पूर्ण रूपे शरीर को और चेतना को हमें संकीर्तन में लगाना होगा। ये जो संकीर्तन यज्ञ, ये पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, फुल टाइम। प्रभुपाद ने अपने एक शिष्य को पत्र लिखा, संकीर्तन मीन्स चैंटिंग हरे कृष्णा एंड गिविंग ऑल अदर एंगेजमेंट्स। हर तरह के काम धंधे निपटाए लगे हुए साथ में कभी कभी हरे कृष्णा कर लिया, पार्ट टाइम है ये, तो हम फुल टाइम तो है नहीं जी, हम तो गृहस्थ आश्रम में हैं। चाहे कोई गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, हरेक की फुल टाइम एक्टिविटी है संकीर्तन। तब जाके चेतना का शुद्धिकरण होगा। रथ जा रहा है, रथ को एक ही रास्ते पे जाना पड़ेगा, वो चल थोड़ा मार्केट में घूम के आते, मार्केट में घूमने गया तो फिर चेतना दूषित हो गई, फिर उतना ही टाइम लगेगा उसको शुद्ध करने में। नहाते नहाते बोले चल थोड़ा सा कीचड़ डाल लें, समझ गया बिल्कुल। इसको है व्यवसात्मी का बुद्धि रहना फुली। तो बोले कैसे हमेशा फुली रह सकते हैं? हमारे जो भी एंगेजमेंट्स हैं, जो भी कार्य है, उसका एक ही लक्ष्य होना चाहिए, संकीर्तन यज्ञ को आगे बढ़ाना। हमारी जो भी पावर है, पोजिशन है, धन है, संपत्ति है, योग्यता है, हम विद्यार्थी हैं, गृहणियां हैं, बिजनेसमैन है, जो भी है, एक ही लक्ष्य है, संकीर्तन यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाना है और कैसे इसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरा के अगर हम नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें नित्यानंद प्रभु के आदेशों का पालन करना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि अगर कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, कीर्तन कर रहा है भक्तों के संग में, बिना उनकी निंदा किए निश्चित रूप से वो मेरी कृपा प्राप्त करेगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं क्या होना चाहिए हमें? अदोषदर्शी, दूसरों में दोष ना देखें। यह संभव नहीं है कि हम दूसरों में दोष देखें और महाप्रभु की आज्ञा कीर्तने सदा हरि करें, मुश्किल है। जो देखेंगे उसी का कीर्तन करेंगे, जो सुनेंगे उसी का कीर्तन करेंगे। निंदा क्या है? दोषानुकीर्तन। लेकिन महाप्रभु ने क्या बोला? कीर्तने सदा हरि, बिल्कुल अपोजिट है। और यही हमारे राग द्वेष को बढ़ाती है और वही लुटेरों का काम करती है और वही हमें अपने पद से भ्रमित कर देती है। अदोषदर्शी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन है बहुत मुश्किल। क्या कहना कहूंगा, दूसरों में दोष ना देखना आसान है कि मुश्किल है? जब बोला गया कलई दोष है निधि राजन, अब दोषों के सागर में दोषी तो दिखाई देंगे, दोषी दिखाई देंगे, और इस दोषों के सागर में दोष ढूंढना कोई बहुत बड़े शैलक होम्स नहीं चाहिए, बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं चाहिए, बहुत बुद्धिमता नहीं चाहिए कि मैंने इसके अंदर दोष देख लिया। ये तो बच्चे भी कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी अगर नाराज होते हैं, उनकी इच्छा पूरी ना हो, अपनी मां को भी थप्पड़ मार देंगे, जोर से रो देंगे, कोई चीजें फेंक देंगे। तो एक छोटे बच्चे के लिए भी दोष देखना बड़ा आसान है, लेकिन छोटे बच्चे को माता पिता को ट्रेन करना पड़ता है, बेटे इसको थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू, बोलो थैंक यू, समझे। अपनी कृतज्ञता प्रकट करना उसको सिखाना पड़ता है, लेकिन दूसरों में दोष देखना उसको बड़ा आसान है। वो सीधा बोलता है, बोलना सीखता है, बोल देता आप गंदे हो। तो बच्चा भी बड़ा नेचुरल, उसके लिए स्पॉन्टेनियस है दोष देखना उसके लिए, और उसको ट्रेन करना पड़ता है कि आपके साथ अच्छा होगा तो कम से कम थैंक यू तो बोलो, है ना। ये अभी तक हमारी आदत बनी पड़ी है, हमारे लिए बड़ा नेचुरल है दोष देखना, लेकिन हमें अपने आप को प्रशिक्षित करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा अच्छे को देखने के लिए। और किसी के अंदर अच्छा देखना, ये कोई हम उस पर ऐसा नहीं करें देखो आप में अच्छे गुण देख रहे हैं, ये हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। एक बार हिजोलनेस भक्ति वासुदेव महाराज यहां पर आए थे एक दो साल पहले, उन्होंने बताया कि हम किसी में बुराइयों को देखते हैं तो हमारे दो रिस्पॉन्स हो सकते हैं, एक तो हम रिएक्ट करें वो कितना खराब है, कितना ये है, कितना वो है, और दूसरा हम ये सोचें इसकी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, है ना। जब हमें किसी में दोष दिखाई दे रहे हैं तो पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि हम सोचें इसकी क्या मदद कर सकते हैं, ये रिस्पॉन्स है, और उसका गुणगान, उसका कीर्तन करना ये रिएक्शन है। और हमें कहीं कहीं मालूम भी नहीं होता कि क्या असलियत है। हमें बचपन में एक टीवी में एक सीरियल देखा था, एक कहानी आई थी कि एक लेखक था, उसको स्टोरी लिख रही थी, तो उसको बड़ी एकांत जगह चाहिए थी, तो बड़ी उसने एक सिलेक्ट की एकांत जगह कि यहां पे कोई शोर शराबा नहीं है। उसके जहां वो रह रहा था उसके पास एक और घर था बस, बाकी सब सुनसान था। उस घर में एक बूढ़ी महिला थी, एक उसकी बहू थी, उसे बड़ा यहां ज्यादा शोर शराबा नहीं होगा और यहां बैठ के लिखूंगा। लेकिन होता क्या था, उस घर से इतनी गालियों की आवाज आती थी, वो बूढ़ी सास जो है बहू को गालियां ही देती रहती थी, ये गंदी गंदी गालियां जोर जोर से, तो बड़ा डिस्टर्ब होता था। फिर तो बोला चलो ये बहू कितनी अच्छी है, वो कहीं बार उसको दिखता था बाहर बहुत सुशील शांत साध्वी, बेचारी कितनी अच्छी है, उस पर कितना अत्याचार हो रहा है, चलो मैं इसी पर कहानी लिखूंगा कि कितना ये सहन कर रही है। तो लिखने से पहले मैं देख लूं क्या होता क्या है, इतनी चिल्लाती क्यों है। तो उसने एक बार दीवार पर चढ़ के देखा कि क्या हो रहा है, तो हैरान हो गया। वो बूढ़ी महिला जोर जोर से उसको गालियां दे रही थी, लेकिन वो गालियां क्यों दे रही थी, जो उसकी बहू थी वो उसको दूर से उसको जीभ चढ़ा रही थी, उसको इशारे कर रही थी। तो मन चला रहे बाप, मुझे क्या लग रहा था कि बूढ़ी कितनी क्रूर है और ये बेचारी ये बहू कितनी अच्छी है, अब मालूम चला। तो हम कभी भी ऐसे दीवार पे चढ़ के देखते नहीं अंदर क्या हो रहा है, हमें ऐसे देखते हैं देखो उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया, और इसी के आधार पे हम आगे बढ़ाते जाएंगे और हम अपराध करते हैं और नित्यानंद प्रभु कृपा से वंचित हो जाते हैं। कीर्तनीय सदा हरि, हर क्षण हमें भगवान का, भक्तों का गुणगान करते रहना है। इसके लिए योजनाएं बनानी है कैसे गुणगान करना है, तब तो हम इन शत्रुओं से बच जाएंगे। जैसे ही हम इस कीर्तन नहीं करेंगे, भगवान का गुणगान नहीं करेंगे, दोषों को देखेंगे या दोषा का कीर्तन करेंगे, ये लुटेरे पकड़ लेंगे, आ जाओ और हमें इंद्र तृप्ति क्यों ले जाएंगे। ये हमारे अंदर काम इच्छाएं बढ़ना, ये वैष्णव अपराध का परिणाम होता है। अचानक सही चलते चलते हम देखते हैं अरे ऐसे कामों की इच्छाएं बढ़ रहे हैं, ये दोषों का कीर्तन करने से ये परिणाम होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, देखें कैसे इस भक्ति हम मदद कर सकते हैं। एक बार रिजोलिनस गोपाल चंद्र स्वामी बाल के पास गया मैं किसी भक्त की ऐसे दोषों का वर्णन करने के लिए, है ना, कि आजकल उसमें ये दोष आ रहे हैं। तो महाराज ने सरप्राइजिंग बोला, क्या उत्तर दिया, यू गिव हिम मोर एसोसिएशन, आप उनको और संग दीजिए, ये न्यूज एसोसिएशन। ये कितना एक पॉजिटिव तरीका है, और देखते हैं भगवान के भी ये प्रकृति है अदोषदर्शी। भगवान ने पूतना को मां का स्टेटस दे दिया, कितने दोष थे पूतना में। अगर भगवान ने केवल माफ किया था तो ठीक है, मैं जानता हूं तुम कोई सुंदर महिला नहीं हो, तुम राक्षसी हो, चलो माफ किया जाओ, आगे हिम्मत करना ऐसा, ठीक है, इस बार माफ किया। ज्यादा व्यक्ति ये करते, हमारे केवल माफ ही नहीं किया, भगवान ने उसको मां का सर दे दिया। भगवान ने एक अच्छा खून देखा, मुझे स्तनपात कराने का प्रयास किया है। तो इस ढंग से ये हम इसको विकसित करना पड़ेगा, बड़ा फोकस रहना पड़ेगा, पूरे के पूरे महासागर में एक घास का तिनका है उसको देखते रहना है। सब दोषों का सागर है, उसके अंदर एक अच्छे गुण को देखना है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पास अगर कोई आता था कि मालूम है उस वैष्णव ने क्या कर दिया, बोले चुप 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 चुप। अगर वो वैष्णव हरे कृष्णा का जप और कीर्तन कर रहा है, मुझे नहीं सुनना वो क्या कर रहा है, चाहे झूठ है सच है, मैं नहीं सुनना चाहता, मुझे अपनी भक्ति लता बीज की रक्षा करनी है। देखिए, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, गुरु और कृष्ण के पास से भक्ति लता बीज तो मिल जाएगा, लेकिन इस बीज की लता को पूरा विकसित करने की जिम्मेवारी किसकी है? गुरु की, कृष्ण की, किसकी जिम्मेवारी है? साधक की। ये हम भूल जाते हैं, ये जो बीज है इसको आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेवारी है, तो मुझे सावधान रहना पड़ेगा, ये तो कृपा हाथ से निकल जाएगी, तो सावधान, इसकी रक्षा करनी पड़ेगी इस सब तरह के अपराधों से, जो हमारी नेचुरल टेंडेंसीज है दोष देखने के, नेचुरल है, कहीं जन्मों में करते रहे तभी तो संधि भूमि पड़े हुए हैं। अगर बाहर निकलना है नित्यानंद प्रभु की कृपा से, देखिए हम लोग सोचते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला, एक बारी गौरांग बोल दो, एक बारी नित्यानंद बोल दो, आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। क्या लगता है आपको इसमें, क्या क्या कैसे समझे स्टेटमेंट को? ये इतना वो नहीं है। जगदानंद पंडित भी कहते हैं, हा गौरांगा हा गौरांगा, क्या क्या रोते रोते गौरांगा गौरांगा पुकारते रहे, इससे कोई प्रेम नहीं मिलने वाला। हाँ, नित्यानंदा नित्यानंदा क्या क्या पुकारते रहे, रोते रहे, कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक हम हृदय से प्रयास नहीं कर रहे होंगे उनके आदेशों का पालन करने के लिए। हाँ, पुकारे नित्यानंद प्रभु को कि देखो मेरे में प्रवृत्ति है दोष देखने की, लेकिन आप मुझ पर कृपा करो। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। जब तक दोषों को देखते रहेंगे हम दुखी रहेंगे, और जब हम गुणों को देखेंगे हम भी खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। लेकिन पता नहीं हमारी ऐसी प्रवृत्ति है, बार बार इतना सुनने के बाद हम फिर से भटक जाते हैं। तो इस मार्ग पर रहने के लिए हमें बल की आवश्यकता है। बल किस लिए? कि अपने संस्कारों को फॉलो ना करें, अपने मन को ना फॉलो करें, बल्कि हम नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के आदेशों को पालन करें। इसके लिए बल चाहिए, तो हमें प्रयास भी करना है, साथ साथ प्रार्थना भी करनी है, हमेशा गुणगान करने का प्रयास करना है, दोषों को देखने से बचना है। और हमारा कीर्तन तभी सफल होगा जब हम बहुत अच्छे ढंग से, जो हमने दीक्षा के समय संकल्प लिए हैं, 16 माला का ध्यान पूर्वक जप और 4 नियमों का सख्ती से पालन, ये जब हम दीक्षा में लिए संकल्पों का पालन करते अच्छे ढंग से, तो भगवान इतने सर्वशक्तिमान है कि अपनी बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल देते हैं, और यही बहिरंगा शक्ति हमारे लिए सारी की सारी सुविधाएं देती है कि हम इसको बड़ी आसानी से भगवत धाम वापिस जा सके। तो देखिए, ये बहुत सुंदर अवसर है हमारे पास कि हम इसका पूरा लाभ उठाएं। हम चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आ गए हैं, भगवत धाम जाना तो सुनिश्चित है, क्योंकि संकीर्तन आंदोलन ये भक्ति की विधि इतनी शक्तिशाली है। प्रभुपाद कहते हैं अपने आप ये एक साधक को सिद्धि की तरफ खींचती है, लेकिन हम अगर अपने इच्छा को प्रकट करेंगे, इच्छा को प्रबल करेंगे और शुद्धता से इस मार्ग पे चलेंगे, तो इसी जीवन के अंत में हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा बहुत जन्म भी लग सकते हैं और हम अपनी भक्ति को आच्छादित भी रख सकते हैं। तो इसलिए पूरे पूर्ण रूप से ये कृपा उपलब्ध है, इस कृपा को हम प्राप्त करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। प्रश्न टिप्पणी?
हरे कृष्ण भाऊ जी, बहुत इनोवेटिव प्रेजेंटेशन था, श्लोक देख के पहले डर लग गया था, बट बहुत आशाप्रद था। एक चीज तो शुरू से ही, मतलब लेक्चर में एक कंसेप्ट मुझे लगा कि पिरोया हुआ था, دیٹ واز دا کنسپٹ آف مرسی. مرسی ہو جائے گی, پہلے آپ نے بتایا گرو کی مرسی ہوئے گی, پھر آچاریہ کی ہوئے گی, پھر گور نتانند کی مرسی ہوئے گی, پھر رادھا کرشن کی مرسی ہوئے گی اور کرشن بلرام کی مرسی ہوئے گی. تو مطلب پونا گھنٹے سے مرسی مرسی سن رہا تھا, پر میں یہ سوچ رہا تھا مرسی کیا ہوئے گی, مطلب مالا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, مرسی ہو جائے گی تو چار نیم پالن کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. واٹ از مرسی, مطلب جسٹ لائک یعنی فردر ایکسپلین واٹ از مرسی, مطلب کیا ایسا کیا ہو جانے والا ہے وہ مرسی ملنے کے بعد جو اگر ابھی نہیں ہے تو جس کی وجہ سے مجھے بہت کچھ نقصان ہوگا. واٹ وی آر لیکنگ کہ وہ مرسی ہو جانے سے وہ فلفل ہو جائے گا.
جیسے ہم نے یہ نہیں بولا کہ مرسی کرنے سے کچھ نہیں کرنا, بیکاز ہم نے بولا سولہ والا دھیان پر جب کرنے پڑے گی. ہم نے یہ بھی بولا خالی گورانگا نتیانند کرنے سے مرسی نہیں ملنے والے, ان کے آدیشوں کا پالن کرنا پڑے گا اور ان کے آدیشوں کے پالن میں جو کٹنائی ہو رہی ہے اس کے لیے ہم ان سے کرپا مانگے تاکہ ہم ان کے آدیشوں کا پالن کر سکیں. تو کرپا مینس کر اور پا, وی ہیو ٹو انڈیور اینڈ دین وی گیٹ. مہاپرو کہتے ہیں یتن آگرہ بنا بھکتی نہ جنمائے پریت, یتن اور آگرہ. دامودر لیلا آ رہی ہے پریاس اور کرپا دونوں ساتھ ساتھ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ یہ پروسیس ایزی ہے لیکن اس کو ہم چیپلی نہیں لے سکتے. اگر چیپلی لیں گے تو کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آئے. اٹس ویری ڈیپ ڈیپ پروسیس. سب کچھ پورا کا پورا رکھ گیا. اس میں آپ دیکھیں گے جو انوواد میں بتائے گئے ہیں اس پرکار, جب وشے کے دھور تو کھانا سونا میتھن کے درد ویپیش ہوتے ہیں تو گھوڑے تتھا سارتھی سنسار کے انکوں میں گرا جاتے ہیں. اور گھوڑے تتھا سارتھی کو ہے سوتم, سوتم تو ہو گیا سارتھی اور ہائے ہو گئے گھوڑے, اور ان کو دونوں کو ساتھ میں یعنی کہ پورا رتھ گیا. آپ کا اندریاں اور بدھی من اور جو جیو سب کا سب گئے اندھے کو. یہ جو لٹیرے ہیں جو ہمارے بتایا کام کرو لوگ اتیادی یہ سب اس کو اندھے کو میں دھکیلتے ہیں. گھوڑے جاتے ہیں ساتھ میں ساتھی کو لے کے.
ہرے کرشن. جی میں سمجھ پا رہا تھا اس گھوڑے کو جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ پورا کا پورا جائے گا شریر کے ساتھ, تو اس کو ہم لوگ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ جو ویکتی ہے جب وہ مایا میں ہے تو جب اس کو کسی بات سے کرودھ ہوتا ہے تو کرودھ کرتا ہے, جن سے اس کا لگاؤ بڑھ جاتا ہے. جب اس کو کچھ الٹی چیز کھانے کی اچھا ہے تو وہ اس کے دوارا آکرشت ہو جاتا ہے, کھا لیتا ہے. تو الٹیمیٹلی اندریوں کے دوارا بیکا ہوا ویکتی, یہاں پر جو کنواں بتایا گیا, مطلب وہ اس طرح سے ہے جو پوری طرح سے کنٹرولڈ بائی مائنڈ اینڈ سینسز. اور ویکتی نے تو کنواں ڈھونڈتا رہے گا کہ میں کہاں گرا ہوں, میں تو بچا ہوں, میں تو اوپر ہی ہوں. تو یہاں پر سینسز کا ان کے جو کام کروتھ لوگ سے اٹیک جو ہو رہا ہے وہ الٹیمیٹلی یہ ہے کہ سوچھند ویکتی جس کے اوپر جو بدھی کا استعمال نہیں کرتا ہے اور جو چیزیں اس کو جب جیسے ملنی ہے کام کروتھ کا جب اٹیک ہونا وہ کر رہا ہے اس چیز کو, تو یہ کنویں میں گرا ہوا تھا اس کو.
یا ویری گڈ, میں نے لکھا ہوا دس شیشو, وہ اس کو ایک باندھ لیتے ہیں اور اس کو اپنا داس بنا لیتے ہیں. بس ٹھیک ہے, تو آپ سب بھکتوں کا بہت بہت دھنیہ واد. جگت گرو شری مت پربھو کا, ہاں جی کوشچن ہے, چلیے لاسٹ کوشچن. ہری
کرشن پربھو جی, ہم ایکسٹرنل اسٹیپس کیا لے سکتے ہیں کسی کو نہ اوپینڈ کرنے اور کسی کو مطلب کسی کے اندر فالٹس نہ دیکھنے کی, کوئی ایکسٹرنل اسٹیپس لے سکتے ہیں جس سے ہم اس کو بری عادت کو کم کر سکیں؟
یہ ایکسٹرنل اسٹیپس ہے کہ گنگان کریں, گلوریفائی دا ڈیووٹیز, لک فار دا اپارچونیٹیز ٹو گلوریفائی.
اور نان ڈیووٹیز کو بھی,
کسی کو بھی. پربھوپاد ایک بار بھونیشور میں تھے, بھونیشور کے نندن کانن میں پربھوپاد کے ودیشی ڈسائپل نے وہاں شیر کو دیکھا تو شیر کو چھڑی سے چھیڑنے لگے. پربھوپاد نے ترنت اس شیشے کو ڈانٹا, ریسپیکٹ ہے, अब शेर उस पशु को भी रिस्पेक्ट करो, आप ये नहीं कि उसको आके तंग करो। यू हैव टू रिस्पेक्ट इवन एन एंट, एवरी वन। अमानी ना मान दे कीर्तनीय सदा हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के अनंत कोटि वैष्णव वृंद के राय गौर प्रेमानंदे।